نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم اگلا ٹاپک جو اللہ کا بناتا ہے ایک انسان کو وہ کیا ہے خوف اور خشیت اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ خوف بھی ہے اور خشیت بھی ہے اور اسی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم دونوں کا فرق بھی دیکھیں گے تو خوف کیا ہے ایک نعمت ہے اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ان دو لوگوں کے بارے میں کہا کہ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا تھا اور وہ موسیٰ علیہ السلام کے اس بڑے گروہ میں جم گئے اور انہوں نے اس کام کو کرنے کا ارادہ کر لیا. اشارہ یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا کی طرف ہے. میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتی, صرف آپ کو بتا دوں کہ خوف اللہ کی نعمت ہے. اس وقت بس یہ لکھ لیجئے کہ اللہ سے ڈرنا اور اس سے خوف رکھنا اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا شکرانہ جنت میں جا کر ہی ہوگا, کیونکہ اللہ سے بے خوفی اللہ کی نافرمانی کرنے پہ مائل کرتی ہے اور نیکیوں کا شوق ختم کر دیتی ہے, اور یہ مومنوں کی صفت بھی ہے, اور خوف خدا متقین کی پہچان ہے, اور جو اللہ کو پہچاننا چاہتے ہیں ان کا یہ مشغلہ ہے. دنیا میں اللہ کی ذات سے خوف اور خشیت کا رشتہ رکھیں گے نا تو آخرت میں امن اور ایمان کا حصول ہوگا اور دنیا میں خوشبختی کی علامت ہوگی. اور خوف کیا ہے؟ کمال ایمان. ہر چیز کا ایک کمال ہوتا ہے نا, عروج, پرائم, چوٹی. تو ایمان کی چوٹی خوف ہے اور حسن اسلام ہے. خوف کے بغیر جو اسلام آتا ہے نا وہ خوبصورت نہیں ہوتا. اور کس چیز کی علامت ہے خوف؟ دل کی پاکیزگی کی. انسان کے اندر خوف آتا ہے نا تو دل گندا رہ ہی نہیں سکتا, کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ دل میں اللہ کی محبت کو جگہ دینی ہے. اور نفس کی طہارت کی علامت ہے خوف. خوف الہی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ آپ یہ کہہ لیجئے کہ خوف ہی وہ موٹیو ہے جو راتوں کو جگاتا ہے, تتجافى جنوبهم عن المضاجع کی صورت میں. اور خوف ہے جو 20-21 گھنٹے کے روزے بھی رکھاتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے کہ جب کسی کو مل جاتی ہے نا تو اس کو نیکیاں کر کے بھی چین نہیں آتا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی تعریف فرماتے ہیں سورۃ مومنون آیت 57 سے 61 میں, ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون. اردو ترجمہ پڑھتی ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے, آپ بعد میں اس کو ٹچ کریے گا. فرمایا یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کریم کی ہیبت سے ڈرتے ہیں, اور جو لوگ اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے, اور جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو میسر ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں, اس حال میں کہ ان کے دل مارے خوف کے لرزتے ہیں. کس بات کا خوف ہے؟ کہ کہیں ہمارے عمل اور صدقے مقبول نہ ہو, یعنی ان کی قبولیت نہ ہو جائے. اور یہ کہ انہیں اپنے رب کریم کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو خیر اور بھلائی کے کاموں میں سبقت کرنے والے ہیں, اور یہی لوگ ہیں جو واقعی آگے بڑھنے والے ہیں. جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی, آیت 60 کا جو حصہ, والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ, کیا ڈرنے والوں سے مراد شراب نوشی کرنے والے اور بدکاری کرنے والے اور وہ جو چوریاں کرتے ہیں, یہ اور جیسے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا, اے بنت صدیق, نہیں, بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے, روزہ رکھتے اور صدقہ و خیرات کرتے ہیں, لیکن اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال قبولیت سے ہٹ نہ جائیں. تو کیا پتہ چلا کہ خوف کیا ہے؟ کہ نیکیوں کو کافی نہیں سمجھنا. اپنی موجودہ حالت پر انسان خوش نہ ہو. ابو خفص ہیں, یہ ڈکشنری بھی ہے یعنی پہلے لغت میں سے, کہتے ہیں, بڑا خوبصورت کوٹیشن ہے, آپ اس کے چند جملے اپنے ہاتھوں سے لکھیے گا. کہتے ہیں کہ دل کے اندر خوف کی حیثیت چراغ کی سی ہے. امیجن کر لیا کرے جب کوئی ایسی کوٹیشن ہو نا, فوراً اس کو چھوٹے چھوٹے لفظوں میں کرا کریں. دل, دل میں چراغ ہے. چراغ کیا کرتا ہے؟ روشنی دیتا ہے. تو لہٰذا خوف کا چراغ کیا کرتا ہے؟ اس کی روشنی کی بنیاد پر دل خیر اور شر کی چھان بین کر کے دل کو لذت آشنائی سے ہم کنار کرتا ہے. سوچیے گا ذرا, دل کے اندر خوف کا چراغ ہے, اس کی روشنی خیر اور شر کی چھان پھٹک کرواتی ہے, और जब पता चल जाता है ये ठीक है ये गलत है, तो उसके बाद दिल में अल्लाह से मोहब्बत की आशनाई पैदा होती है, और इसके बरक्स भी है। और हर वो चीज़ जो खौफनाक हो, इससे तुम दूर भागते हो सिवाय खौफे इलाही के। नोट किया आपने, हम खौफ वाली चीज़ों से दूर भागते हैं ना, लेकिन खौफे इलाही ऐसी चीज़ है इससे दूर नहीं भागना, इसके करीब आना है, ताकि हम बहुत सारी नाफरमानियों से दूर भागें। इसका मामला बरक्स है, अगर तुमको खौफे खुदा नसीब हो जाए तो तुम भागने की बजाय इसकी तरफ कुशां कुशां खिंचे चले आते हो। लिहाजा खाइफ खौफ से पीछा छुड़ाने की खातिर अपने रब्बे करीम की जवार में आकर पनाह लेने की कोशिश करता है। बहुत ही खूबसूरत बात है, अगर आपको मैं समझा पाई कि अल्लाह का खौफ भागने की चीज़ नहीं है कि आप उससे भागें, क्योंकि आप सांप से भागते हैं क्योंकि आपको खौफ है, बिजली के तार से दूर भागेंगे क्योंकि खौफ आएगा उसको देखकर, लेकिन अल्लाह का खौफ दूर भागने की चीज़ नहीं, अपने करीब करने की चीज़ है। और याद रखिए कि जब एक बंदा अल्लाह का खौफ दिल से निकाल देता है ना, तो दिल वीरान हो जाता है। आप एक जुमला और लिख लें, और जैसे मैंने आपको शुरू में रेकमेंड किया था कि डायरी में जेम्स बनाएं, ये जेम्स आपके लिए बाज़ दफ़ा देखिएगा कि बहुत ही खूबसूरत सेंटेंसेस का जरिया होंगे। कल हमने एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस किया, कहीं हम थे तो एक साथी हैं जो ऑनलाइन से सुनती हैं, और मैंने हमेशा ही उनकी आईडी देखी है, 2 मिनट के लिए भी रूम खुलता है तो वो पता नहीं किस तरह उनको पता चल जाता है वो आती हैं। तो उन्होंने कहा मैंने शेयरिंग करनी है, और ये शेयरिंग हुआ जो मैं दिन रात सारी क्लासेस सुनती हूँ, तो इनके ही बोले हुए कुछ लफ्ज़ हैं तो मैं उनको बोलती हूँ, लिख के लाई हुई थी 2-3 पेज से। यकीन करें जब वो पढ़ रही थी उसको 5-6 मिनट लग गए, तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं अपनी बातें दोहरा रही हूँ, तो मुझे लगा कि वाकई ये सुनती हैं। तो इस तरह के ये छोटे जुमले हैं ना, ये आपके लिए बहुत बड़े होंगे। अब ये 60-70 सफ़ों की किताब एक टॉपिक पे, ये आप कहाँ लेके किसके साथ चलेंगे? तो जो चीज़ दिल के साथ लगे ना उसको रख ले, और वो क्या है कि खौफ इलाही के बगैर दिल वीरान हो जाता है। दिल की आबादी खौफ के साथ है, जैसे घर की आबादी इंसानों के साथ होती है ना, किसी दुकान की आबादी वहां मौजूद सामान की वजह से होती है। खौफ निकल जाता है ना तो दिल वीरान हो जाता है, और जिस दिल में खौफ इलाही की शम्माएं रोशन हो जाती हैं, इस कल्ब के अंदर शहवत परस्ती के मज़ाहिर जलकर राख हो जाते हैं। यकीन करें सोने के पानी से लिखने वाली बात है। जितने लोग शहवतों के पीछे अपने नफ्स के गुलाम बने हुए ना आज, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, उस शहवत की आग को खौफ की आग से जला दो, क्योंकि खौफ बहुत बड़ा होता है इंजाम का। और मादियत तो दुनियादारी की चाहत जान छुड़ाकर भागने पर मजबूर होती है। मैं इस कोटेशन को दोबारा अपने लफ्जों में ज़रूर बोलना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत अहम है। आप बीसियों बातें भी खौफ पे सुन जाएंगे ना, लेकिन काम यही बातें आएंगी। क्या बात? पहली बात, खौफ इलाही दिल की आबादी है। खौफ रुखसत हो जाए तो दिल वीरान हो जाता है। जिस दिल में खौफ इलाही की शम्मा रोशन हो जाए तो वहां से शहवत परस्ती निकल जाती है, जल जाती है उसकी हिटर से, कि मैं 2 मिनट की शहवत पूरी करने के लिए जहन्नुम का अंगारा क्यों बनूं? दुनिया में भी देखिए, पुलिस का डर, जेल की कोठरी में जाने का खौफ कई मुजरिमों को रोक ही लेता है ना जुर्म से। तो जब अल्लाह का खौफ होगा ना, तो अल्लाह की बनाई हुई आग, नारुल्लाहिल मुकदा अल्लती तत्तली वलल अफ़इदा इन्नहा अलैहि मुसदा फी अमदिम ममद्ददा, जब अल्लाह की आग याद आती है कि जो बड़े बड़े सतूनों की शक्ल में इंसान को बांध देगी, तो फिर शहवतें भाग जाती हैं, सब नशा हरन हो जाता है। ये बिल्कुल ऐसी है कि कोई बिल्कुल शहवत के मूड में हो और एकदम कमरे में चूहा निकल आए या चोर आ जाए, कौन शहवत पूरी करेगा? कौन वो गंदे मंजर देखेगा जिसमें अभी मजा आ रहा था? क्योंकि चूहे का खौफ, छिपकली का खौफ, मक्खियों का खौफ, या कोई भी खौफ बंदे के अंदर से गुनाह की चाहत कम करता है। तो जिस बंदे को अल्लाह का खौफ आ जाए, ये कैसे हो सकता है फिर वो वीकेंड कहीं और वीक नाइट्स कहीं और वो रात कहीं तो दिन कहीं। इसी तरह जब भी दिल रोशन होता है ना खौफ इलाही से, तो दुनिया की असल खुल के दिखती है। तो वो जो दुनिया के ऊपर एक वनीर चढ़ा हुआ है ना, गोल्डन केज, ये दुनिया दूर से सोना लगती है। खौफ इलाही की आंख से देखेंगे ना तो अंदर के सांप बिच्छू दिखते हैं। आप कहते हैं घर, गोल्ड प्लेटेड वॉल्स और पेपर्स लगे हुए हैं और दिस एंड दैट, लेकिन जब खौफ की आंख देती है तो अंदर दिखता है कि ये फरमा बरदारी से ले रही हूँ घर या नाफरमानी से, तो गुनाह की लज्जत खत्म हो जाती है और इंसान के अंदर से दुनिया की हिरस खत्म हो जाती है। मैंने क्या करना है चंद दिन के लिए ये घर अपने नाम लगाकर, अगर इसमें से जहन्नुम के सांप और बिच्छू निकल आए। हसन बसरी कहते हैं कि अल्लाह की कसम इन लोगों का अल्लाह की इतात व फरमा बरदारी का मशगला हुआ करता है और इसमें जिद्दोजहद इनका शुआर, मगर एहतियात का ये आलम है कि मारे खौफ के सहमे हुए हैं कि कहीं इनके अमाल रद्द ना कर दिए जाएं। मोमिन की शान भी यही है कि एक मरतबा एहसान पर फायज होकर, नोट कीजिएगा, एक मरतबा यानी आप एहसान के दर्जे पर फायज हो गए ना, कोई बड़ी नेकी करने लग गए, तो फिर खौफ का दामन मजबूती से थामे रहता है, यानी नेकियां शुरू करके छोड़ नहीं देता। ये असल में हसन बसरी का कौल मोमिनून वाली सिफत के वल्लज़ीन युतून मा अतौ व कुलूबुहुम वजिला पे कैसे लगेगा कि जब एक दफा नेकी करता है ना तो बंदा खौफ ज्यादा ये रहता है कि कहीं अब ये नेकी छूट ना जाए। तो लिखिए यहाँ, खौफ खुदा क्या है कि जो नेकियां कर रही हूं वो मुझसे छूट ना जाए। जबकि लिखते हैं कि मुनाफिक का हाल ये है, अमल के मैदान में सबसे पीछे नजर आता है और अल्लाह के अजाब से अमन में रहने वालों के दावे करनों में सबसे आगे होता है। बात वाज़ेह है। तो अल्लाह से खौफ मांगने की जरूरत है। ये कितनी बड़ी चीज़ थी जिसको हमने आज अपनी जिंदगियों से निकाला। नमाजें भी पढ़ते हैं खौफ इलाही के बगैर, रोजे भी रखते हैं खौफ इलाही के बगैर, और इल्ला माशाल्लाह जो भी नेकी मिलती है उसमें जो कॉमन फैक्टर था ना, बल्कि मैं एक जुमला बोल दूं तो आप समझ लें तो लिख लें कि इबादत की रूह खौफ इलाही है। अल्लाह के खौफ के बगैर जो नमाज पढ़ी जाती है ना वो रियाकारी बन जाती है। अल्लाह के खौफ के बगैर जो रोज़ा रखा जाता है ना वो बबाल बन जाएगा। अल्लाह ताला कहते हैं वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीनहुम युराउन अल्लज़ीनहुम अनि सलातिहिम साहुन, दिखावा शोहरत और ऐसी चीज़ें रहती हैं। और हकीकत यह है कि कितने ही लोग हैं जो गुनाहों की लज्जत के जंगल में फंस गए थे, वहाँ से निकलने का काम उनसे हो ही नहीं पाता था, लेकिन अल्लाह के खौफ ने उनको इससे निकाल दिया। इसमें बड़ी खूबसूरत एक हदीस आपने कई बार सुनी होगी, वो किफ़ल की है। साहबा किराम कहते हैं कि हमने अल्लाह के नबी की ज़ुबान से किफ़ल का वाक्या, कोई कहता है मैंने 60 बार सुना, कोई 90 और 99 का लफ्ज़ भी बोलता है, कि इतनी दफ़ा आप अपनी गुफ्तगू और अपने दरसों और अपने वाज़ों में किफ़ल का वाक्या सुनाते थे। कौन था किफ़ल? बनी इसराइल का बदमुआश शख्स जिसको लोग बुरे नाम से जानते थे, लोगों की मजबूरियां ख़रीदता था। और एक बार एक औरत ने उससे कुछ पैसों का मुतालबा किया, कहा ठीक है 60 दिनार दे दूंगा, बस मेरे साथ एक रात गुजार लो। कितनी को मजबूर होगी उस वक्त तो हाँ कर दी, लेकिन जब वो बिल्कुल उस गुनाह पे कादिर था और काबू पा चुका था उस औरत पे, तो उसने एक जुमला बोला था कि या किफल इत्तकिल्ला, ए किफल अल्लाह से डर जा, उस मोहर को ना तोड़ जिसको अल्लाह ने हराम किया। बस वो वक्त था किफल के दिल में खौफ इलाही के आने का। कहा औरत तू भी आज़ाद और तू पैसे भी ले जा, और उसके बाद किफल है और उसका रब है और रात की घड़ियाँ हैं। वहुम बिलअसखार यस्तगफिरून, कहा अल्लाह मैं इतना बुरा हर दिन ये गुनाह करता हूँगा, मैं ना डरा, ये औरत आज ऐसे डर गई। और फिर उसी रात किफल का इंतकाल हो गया। अगले दिन खबर फैल गई कि किफल मर गया। लोग ये देखने के लिए कि अल्लाह ने किफल को जहन्नुम की किस वादी में डाला है, क्योंकि उस दौर में दुनिया में पता लग जाता था, दिखा देता था अल्लाह लोगों को कि जन्नत में गया या जहन्नुम में, तो लोग तो ये सोच कर आए थे ना कि वो जहन्नुम की वादियों में, लेकिन उसके दरवाजे पे लिखा था कद गफर अल्लाहु किफला, बेशक अल्लाह ने किफल को माफ़ कर दिया। क्यों? खौफ इलाही। वली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह के सामने खड़ा होने से डर गया उसके लिए 2 जन्नतें। वम्मा मन खाफा व नहन नफ्स अनिल हवा फाइनल जन्नत हियल मावा, जो खौफजदा हो गया और अल्लाह के आगे खड़ा होने से डर गया उसके लिए जन्नत है। तो ख्वाहिश परस्ती हो या शहवत परस्ती हो या ऐश परस्ती हो, ये 3 नाम लिख लें, ख्वाहिशें शहवतें और ऐश पसंदियाँ, ये सब दुम दबा के भाग जाती हैं उस इंसान के पास से जिसको अल्लाह का खौफ आ जाता है। اللہ کا خوف ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنے دیتا، اللہ کا خوف فسق و فجور میں مست ہونے نہیں دیتا، اللہ کا خوف چوروں اچکوں کو عابد اور زاہد بنا دیتا. وہ بھی تو ایک شخص تھے نا، نام ان کا میرے ذہن میں اس وقت کلیئر نہیں اس لیے نہیں لیتی. چوری کے ارادے سے کسی کی دیوار پھلانگی رات کے وقت میں، اور اندر سے آواز آ رہی ہے کہ سورۃ حدید کی آیت پڑھ رہا ہے، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا ابھی لوگوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی خشیت سے ڈر جائیں؟ کھڑے ہوئے روئے، کہا اللہ وہ وقت آ گیا، وہ آ گیا. توبہ کی، کسی مدرسے میں داخلہ لیا اور بعد میں ایک بہت بڑے امام بنے. تو یاد رکھیے کتنے لوگوں کو گناہوں سے روکتی ہے یہ چیز جب ان کو اللہ کا خوف آتا ہے، اور ایسے لوگ پھر سچے محبت والے بنتے ہیں، اور ان کے آنکھوں سے پھر جو آنسو نکلتے ہیں حقیقت میں ان کے دل کی زمین کو وہ سیراب کر دیتے ہیں. تو اللہ کا خوف اور خشیت بہت بڑی چیز ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدر اسی سے پوچھئے جس کو اللہ کا خوف ہے. بے خوف بندہ کہتا ہے کوئی نہیں، مکھی کی طرح ناک پہ بیٹھا گناہ مٹا دیا. حدیث میں آتا ہے مومن کے لیے گناہ کرنا ایسے جیسے پہاڑ کے پاس کھڑا ہے اور وہ پہاڑ اس کے سر پہ گر جائے گا. منافق گناہ ایسے کرتا ہے جیسے ناک پہ مکھی بیٹھی اور ہاتھ کے اشارے سے اس کو اڑا دیا. اب میں اور آپ اپنے اوپر خود دیکھیں کہ ہمارے اندر یہ خوف کتنا ہے. اور یہ اللہ کا خوف جو ہے نا، یہ بندے کو بے عمل نہیں بناتا، باعمل بناتا ہے. آگے ہم انشاءاللہ اس کی چار قسمیں دیکھنے والے ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا، بہت ہی خوبصورت بات ہے. جملہ سوچ کے بولوں گی، آپ بھی لکھیے گا. جو اللہ سے خوف زدہ ہوتا ہے نا، اللہ اس کو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون بنا دیتا ہے. سورۃ بقرہ آیت 112. اللہ کے خوف کی وجہ سے بندہ ہر خوف اور غم سے نکل جاتا ہے. کیا خوف ہوتے ہیں؟ لوگ کیا کہیں گے، باتوں کا خوف، تانوں کا خوف. کل بھی ایک سسٹر نے کہا، اسٹوڈنٹ ہے ماشاء اللہ، کہتی جو سب سے بڑی چینج مجھے اپنے اندر دکھی ہے قرآن سے جڑنے اور کورس کے بعد، کہ میں بے خوف ہو گئی ہوں، مجھے اب کسی کی پرواہ رہی نہیں. ہم ہر چیز سے ڈرتے تھے، لوگ ناراض ہوں گے، ساس ناراض ہوگی، سسر ہو جائے گا، ابا ناراض، امی ناراض. اللہ راضی تو سب راضی، رب راضی تو جگ راضی. تو رب کو ناراض کریں گے تو کوئی راضی نہیں ہوگا. اس لیے انسان اگر بے خوف ہونا چاہتا ہے، اور آج آپ کو کہتا ہے کہ انسانیت کا بہت بڑا غم خوف ہے، بڑھاپے کا خوف، اکیلے رہ جانے کا خوف. یہ ڈپریشن کیا مصیبت ہے؟ خوف ہے، کچھ کر نہیں سکوں گی، یہ نہیں ہوگا. اور میں اکثر کہتی ہوں قرآن سے دوری خوف سے قربت ہے. جس نے پڑھتے پڑھتے قرآن چھوڑا وہ خوف کا شکار ہو گیا، جس کو لوگ ڈپریشن کہتے ہیں. بیسیوں مثالیں میں ادھر ادھر کی آپ کو دے سکتی ہوں اگر آپ کو یقین نہ آئے. جنہوں نے قرآن کو پڑھا، کورس شروع کیا یا کچھ بھی کیا، کسی وجہ سے مجبوریوں کے نام پہ، فائدوں کے نام پہ، کوئی اور کمٹمنٹ سامنے آ گئی، اس کتاب کو چھوڑا، سب کچھ مل جائے گا، امن اور چین نہیں ملے گا. جو اس قرآن سے دور ہوتا ہے نا، اس کا نصیب یا تو پھر ہاسپٹل رہ جاتے ہیں یا سائیکاٹرسٹ رہ جاتے ہیں. گھبراہٹ، بے خوفی اور اپنی ذات کے کچھ نہ ہونے کا یقین. دیکھیے کہ یہ کتاب ہمیں بنا کیا رہی ہے. آپ اور میں اس وقت کہاں بیٹھے ہیں، ہم کیا پڑھ رہے ہیں. آج یہ صبح کلاس کا جو ٹائم ہے، یہ ورکنگ ٹائم ہے. لوگ تو اس وقت کتنا کچھ اس دنیا کو دے رہے ہوں گے، لے رہے ہوں گے. میں اور آپ کیا دے لے رہے ہیں؟ ہم اس دنیا کو کیا دے رہے ہیں؟ ہم امن دے رہے ہیں. سچا خوف جو ہوتا ہے نا اللہ کا، یہ دنیا میں امن لے آتا ہے. صحابہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے، اس لیے ان کے دور میں بہت امن اور چین تھا. اور یہی پھر امن کل آخرت کے امن میں بدلے گا. قرآن پاک میں آتا ہے، غالباً سورہ حج کی آیت ہے، کہ وَهُم مِّن فَزَعٍ وَيَوْمَئِذٍ، اس دن کے فضا سے وہ لوگ امن اور چین میں ہوں گے. کون؟ جو دنیا میں ڈر گئے. اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں یہ بات بتا دیتا ہے کہ میں کسی کے دل میں دو خوف اور دو امن نہیں جمع کرتا. جو دنیا میں بے خوف ہے نا، وہ آخرت میں خوف زدہ ضرور ہوگا. اور اس کا اپوزٹ بھی ہے. عربی زبان کا ایک محاورہ ہے کہ جس شخص نے آج دنیا کی زندگی میں اللہ کے خوف کا اہتمام کیا، وہ کل آخرت کے دن کے خوف سے محفوظ اور مامون رہے گا. اور جس شخص نے دنیا کی زندگی میں خوف خدا کا اہتمام نہ کیا، وہ کل قیامت کے دن خوف و ہراس سے دوچار ہوگا. یہ کیسے ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں، آج آپ اللہ سے نہیں ڈرتے، یا آپ ڈرے، بلکہ یہ تو ڈرنے کی بات ہے نا، ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा, आप अपने ऊपर ले। बिल्कुल छोटे लेवल पे इस बात को समझते हैं। आप अल्लाह का खौफ रखती हैं, आप अल्लाह के खौफ से रिश्तेदारों को खुश नहीं कर सकती। लोग कहते हैं डांस करो, आप करती नहीं। लोग कहते हैं गाने गाओ, आप गाती नहीं। लोग कहते हैं बगैर हिजाब के आ जाओ, आप नहीं आती। यही मसले हैं ना खौफ के। और क्या कहते हैं भला, कोई लोग हमें कोई इससे बड़ी बातों पे तो नहीं सताते। आप अपने जहन को कुरेदें, बिल्कुल खंगालें, क्योंकि आप अपनी इसलाह कर रही हैं ना। तो दवाई से ज़्यादा बाज दफ़ा अंदर से पुरानी बीमारी को निकालना पड़ता है। बैठ के लिखे, यहाँ आप अपने लिए 5-6 लाइनें छोड़ दें नोट्स में, बाद में अल्लाह ताला आपके लिए आसान कर दे। लिखिए मुझे कौन सा खौफ है और अल्लाह की कौन सी बात मानने से रोकता है। यकीन कीजिए ज़्यादा नहीं है। आप नमाज पढ़ते हैं, लोग कुछ नहीं कहते। रोज़ा रखे, लोग कुछ नहीं कहते। ये 4-6 बातें हैं जिसमें उनके अपने नफ़े पे नुकचोट पड़ रही होती है। वो कहते हैं मजबूर तो नहीं किसी ने किया, ये माँ ने तो नहीं कहा कि हिजाब करो, ये फोर्स तो नहीं तुम्हें किसी ने किया। 2-4 चीज़ें। अब आप जब लिखेंगे ना तो अंदर से आपको एक फील होगा, इतनी छोटी सी चीज़ें और उसके बारक्स अल्लाह का खौफ। जब आपका लेवल बड़ा होता जाता है ना तो आपके खौफ और खुशियों के लेवल भी बढ़ते हैं। लेकिन ये लिख लें, आप और मैं अल्लाह के खौफ से बेनियाज होकर लोगों से जिन बातों पर डरते हैं वो बहुत थोड़ी हैं। लेकिन अगर हमने ये शिर्क कर लिया, ये शिर्क है अल्लाह से ज़्यादा दूसरों का खौफ रखना, तो उसके नतीजे में जो नुकसान होगा वो बहुत बड़ा होगा। तो लिहाजा इंसान को अपने रब से डरना है, उससे खशियत का मामला रखें। इमाम बिन रजब का एक कौल है जिसका खुलासा आपके सामने रख देती हूँ। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जो मखलूक है इसको क्यों बनाया। आपसे कोई पूछता है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ, तो वो क्या है कि वो अल्लाह की मार्फत को पाने के लिए कोशिश करे। नंबर एक लिखिए, क्या मैंने पर्पस ऑफ लाइफ समझ लिया। इस कायनात को पैदा करने बनाने का मकसद क्या था, कि हम अल्लाह को पाएं, कोशिश करें। फिर दूसरा, इसकी इबादत और रियाजत की अंजामदही का फरीज़ा अदा करें, यानी उसकी इबादत करें, सिंपल करके लिखिए आप। तीसरा, मकसद एक हयात क्या है, कि इस खौफ और खशियत का मामला करें। और इसके लिए अल्लाह ने अपनी अजमत और किब्रियाई की सारी दलीलें हमें दे दी दुनिया में। जिस चीज़ को देखेंगे आपको अल्लाह की बड़ाई देखेगी। क्यों दी, ताकि लोग उससे डरें, उससे खौफ खाएं, उसके जलाल के आगे इंसान पर भी ना मारे। बंदों को उसने अपने अजाब भी बता दिए, जहन्नुम भी बता दी, उसकी कैद भी बता दी जो उसने नाफरमानों के लिए तैयार किया। और ये सब क्यों किया, ताकि लोग नेक काम करके अल्लाह के अजाब से डरते और घबराते रहें। इस बात को आप अपने लफ्ज़ों में ऐसे समझिए कि हर मुल्क है ना, नॉर्वे का भी कानून होगा, पाकिस्तान का भी है, अमेरिका का भी है, चाइना का भी है। कानून में ये बातें लिखी होती है ना, अगर आपने ओवर स्पीडिंग की तो उसकी ये सज़ा है, सीट बेल्ट नहीं बांधेंगे तो इतना जुर्माना है। ये क्यों बताते हैं, कि इन सज़ाओं के खौफ से ये काम करना छोड़ दो। सबको पता, अब जब आप ये सब काम करने लगते हैं तो आपको खौफ क्या होता है, कि जुर्माना मिलेगा, टिकट मिल जाएगा, लाइसेंस कट जाएगा। बस यही अल्लाह ने किया है। अब ये जुमला भी ज़रा सोच के लिखने का है, अल्लाह का रहम और फजल है कि उसने दुनिया में हमें ये सज़ाएं बता दी हैं। जहन्नम का जिक्र भी ना होता हमारे कुरान में, और सिर्फ खुशखबरियाँ खुशखबरियाँ और अच्छी बातें ही हम करते बोलते, और एकदम मरने की सूरत में सामने मुंह खोल के जहन्नम खड़ी है तो हम चीखते। ये उसी शख्स की बात होगी जो कहे कि मुझे तो आज तक नॉर्वे गवर्नमेंट ने बताया ही नहीं कि सीट बेल्ट ना बांधने का इतना नुकसान है, तब मुझसे क्यों चार्ज कर रहे हो। तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत का इजहार करके हमें दुनिया में सब कुछ डरा दिया। आप देखते हैं कुरान में बार बार जहन्नुम का जिक्र है जो अल्लाह ने अपने दुश्मनों के लिए तैयार की। सजाओं का जिक्र है, कहीं जख़ूम का जिक्र है खाने में, कहीं दरी है जरी खाना, फिर इसी तरह हमीम खोलता हुआ पानी, फिर इसी तरह जंजीरों फी सलासिल सबून जीरान फसलकू, सूरत गालिबन मारिज अल हका में आता है। बड़ी बड़ी बेड़ियों का जिक्र है, संगलियों का जिक्र है। तो ये अल्लाह ताला ने हम सब को डराने के लिए किया, ताकि हम इन चीज़ों से बच सकें। ये अल्लाह की मोहब्बत है। और जितना हम कुरान को करीब से पढ़ते जाते हैं उतना हमारे दिल में ये चीज़ें मौजूद रहती हैं।